पृष्ठ संख्या 7, भूमिका का आदिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि। हिंदी के आदिकालीन साहित्य का समय राजनीतिक दृष्टि से वर्धन वंश के साम्राज्य के पतन का समय है। सम्राट हर्षवर्धन ब्रैकेट में 606 से 647 ईस्वी ब्रैकेट बंद ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर सत्ता का जो विकेंद्रीकरण किया था, वह उसकी मृत्यु उपरांत ही छिन्न भिन्न हो गया और उत्तर भारत में शासन सत्ता के अनेक केंद्रों का उदय हो गया, जैसे कश्मीर, अजमेर, दिल्ली, ग्वालियर, बुंदेलखंड, मालवा, सिंध, बंगाल तथा बिहार, उड़ीसा और गुजरात आदि। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद गुप्त के शब्दों में यह इन्वर्टेड कामा भारत राष्ट्र के भीतर बहुराष्ट्र था इन्वर्टेड कामा बंद 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मौखरी शासक यशोवर्मन के साहस से राजनीतिक दृढ़ता की जो संभावना थी, वह कश्मीर के राजा ललितादित्य की विजय से छीण हो गई। हर्ष के बाद कन्नौज में गुर्जर, प्रतिहारों और गहड़वाल वंशों का आधिपत्य हुआ तो अजमेर और दिल्ली में शाकंभरी के चाहमान या चौहान वंश की प्रतिष्ठा हुई। इसी प्रकार बंगाल और बिहार में पाल वंश का उदय हुआ, धर्मपाल और देवपाल जिसके यशस्वी शासक हुए। बाद में चलकर सेन वंश का राज्य प्रतिष्ठित हुआ। उड़ीसा में गांगो और कलचुरियों का शासन था तो बुंदेलखंड में चंदेल वंश के राजा शासन कर रहे थे। इन्हीं चंदेलों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों और चाहमानों की भांति मालवा में परमार वंश के शासकों की सत्ता थी। मुंज और भोज इस वंश के महान शासक हुए। इसी प्रकार गुजरात में चालुक्य तो कश्मीर में करकोट, उत्पल और लोहार राजवंशों ने शासन किया। उक्त छोटे छोटे राजवंशों का आपस में निजी हितों के लिए संघर्ष होना आम बात थी। राजनीतिक विश्रृंखलता के कारण सामंतवादी ताकतें बढ़ती गईं। धीरे धीरे ये सामंत जनता के भाग्य विधाता हो गए। इनके आश्रयदाता चारण कवियों ने इन्हें अपनी लेखनी से अमर कर दिया। जनता में राजनीतिक चेतना के अभाव का फायदा सीधे शासकों और सामंतों ने उठाया। यह सिलसिला बढ़ता ही गया। अनेक वर्षों में अनेक वंशों शासकों की गुलामी के बाद 1947 ईस्वी में संघीय भारत के उदय के साथ ही यह समाप्त हुआ। इस प्रकार केंद्रीय दुर्बलता के कारण विदेशी शत्रुओं को आक्रमण का सहज ही अवसर मिलता रहा। हिंदू सत्ता आपसी कलह के कारण धीरे धीरे कमजोर होती रही। इसी का फायदा उठाकर 986 ईस्वी तथा 991 ईस्वी में गजनी का दास शासक सुबुक्तगीन ने पंजाब के पृष्ठ संख्या 8 राजा जयपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया और पहली बार हारने के उपरांत दूसरी बार विजयी रहा। आगे चलकर उसके पुत्र महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 27 वर्षों में 17 बार आक्रमण करके देश को तहस नहस कर दिया। खून खराबा, कत्लेआम कर विपुल संपत्ति गजनी ले गया। मंदिरों और शहरों को लूटकर उसने देश में तुर्क ब्रैकेट में इस्लाम की सत्ता स्थापित कर दी और कई वर्षों तक उसके दासों ने इस देश पर शासन किया। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें 5 राजवंशों इलबरी या दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने 1526 ईस्वी तक राज्य किया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम का तेजी से उदय हुआ और हिंदू सत्ता छीण होती चली गई। ऐसे युद्धजन परिवेश में कविता में वीर रस का विस्फोट होना स्वाभाविक था। इस समय परंपरानुसार रक्षा का दायित्व मुख्यतः शूरवीर क्षत्रियों पर था। युद्ध में जाकर चारण कवि पीछे से इनका उत्साहवर्धन करता था। उनकी वीर रस की कविता इन्हें देश की मान रक्षा के लिए हंसते हंसते मर मिटने की प्रेरणा देती थी। जगनिक ने परमाल रासो ब्रैकेट में आल्हा में लिखा, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार कविजन अपनी वीरतपूर्ण कविता से उस समय के वातावरण में वीरता का संचार कर देते थे। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहे थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। इन आक्रमणों से रक्षा का भार देश के शूरवीरों पर था, जिसमें चारण या भाट कभी भी अपनी भूमिका अदा करता था। युद्ध में विरोक्तियां सुनाकर वह उसमें साहस का संचार करता था। शुक्ल जी ने लिखा, इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है, इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव पश्चिमी भारत और मध्य भारत पर अधिक पड़ा। यही वह क्षेत्र भी था जहाँ हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। सामाजिक दृष्टि से भी यह काल अनेक विरोधों और व्याघातों का काल था। समाज में परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुख्य थे। इसके अतिरिक्त निम्न और मध्यम वर्गीय समाज अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त हो गया था। जन्म के आधार पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता इस काल में भी बनी रही। क्षत्रिय जन अपने छात्र धर्म के अनुसार धर्म की रक्षा और प्रजापालन में संलग्न थे। पृष्ठ संख्या 9। वैश्य व्यापार में रत थे, किंतु शूद्रों और स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। शूद्रों का वेद पाठ करना तो वर्जित था ही, उनके साथ खान पान रहन सहन भी वर्जित था। अंतरजातीय विवाह निषिद्ध था। उच्च वर्ग के लोग कुछ विशेष परिस्थितियों में अवश्य ही निम्न वर्ग की कन्या से विवाह कर सकते थे। जाति पांति के बंधन कड़े थे। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के श्रम की पूंजी पर भोग विलास करते थे। आदिकालीन सामंती समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें भोग्या मात्र समझा जाता था। बाल विवाह की प्रथा थी, किंतु विधवा विवाह निषिद्ध था। उच्च वर्ग की स्त्रियों में प्रदा प्रथा का प्रचलन था, जो मुस्लिमों के प्रभाव से और भी सख्त हो गया था। इब्न बतूता आदि विदेशी इतिहासकारों ने प्रदा प्रथा, सती प्रथा आदि का आँखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया है। राजाओं और सामंतों में बहुविवाह प्रचलित था। स्त्रियों के लिए भी राजाओं और सामंतों में लड़ाई झगड़े होते थे। शिक्षा दीक्षा बहुत कम थी। ब्राह्मण वर्ग में कुछ लोग पढ़ लिख कर शिक्षा देने का काम करते थे। उच्च शिक्षा के रूप में इस समय तक नालंदा और विक्रमशिला स्थापित हो चुके थे, जिसका विवरण विदेशी इतिहासकारों एवं यात्रियों ने दिया है। इस युग में मल्लयुद्ध, शिकार या आखेट, घुड़सवारी, संगीत, नृत्य एवं चौसर मनोरंजन के मुख्य साधन थे। समाज में भयानक असंतोष व्याप्त था। हिंदी के कवियों ने इन सब परिस्थितियों के बीच रहकर अपनी काव्य रचना की। धार्मिक दृष्टि से यह काल बौद्ध और जैन धर्मों के ह्रास का काल था। हर्ष के समय ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा हीनयान को पीछे छोड़ते हुए अधिक प्रभावशाली हो गई, जिसमें आगे चलकर स्वयं भगवान बुद्ध की पूजा भी मूर्ति के रूप में होने लगी। वैदिक यज्ञ और मूर्ति पूजा का तो विधान चल ही रहा था, उसी की देखा देखी हिंदुओं को आकृष्ट करने के लिए बहुत सारी बुराइयां बौद्ध धर्म में भी आ गईं। भगवान बुद्ध के भी कई अवतारों की कल्पना कर ली गई। बाद में स्वयं हिंदू धर्म के लोगों ने भी उन्हें एक अवतार के रूप में मान्यता दे दी। महायान में भी मंत्रयान, वज्रयान और सहजयान का रूप प्रकट हो गया। वज्रयान में बोधिसत्वों की देशभूमि तथा पारमिताओं की साधना के बजाय प्रज्ञोपाय साधना विकसित हुई तथा शक्ति स्वरूप योगिनी रूप में अनेक देवियों की परिकल्पना की गई। तांत्रिक पद्धतियों के समावेश हो जाने से धर्म में सिद्धि और अलौकिक चमत्कार पूरी रहस्यात्मकता के साथ प्रविष्ट हो गया। सिद्धों का संबंध इसी प्रकार की साधना से है। सिद्धों ने वज्रयान में प्रवृत्त मार्ग ब्रैकेट में वाम मार्ग से गुजरते हुए इंद्रियानुभवों में रमते हुए इंद्रियातीत निर्वाण या शून्यता की अवस्था को प्राप्त पृष्ठ संख्या 10 करने का उपदेश दिया तथा साधना में काम क्रोध लोभ मोह एवं भय तथा जुगुप्सा पर विजय के लिए इनसे भागने नहीं बल्कि इनको अपना कर इनमें रमण करते हुए इनका अनुभव करते हुए महासुख की कल्पना की। डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने सिद्धों की साधना के विषय में लिखा है कि इन्वर्टेड कामा सिद्ध योगी वर्जित जातियों ब्रैकेट में चांडाली डोम्बी आदि ब्रैकेट बंद वर्जित पदार्थों मदिरा मत्स्य मैथुन आदि निषिद्ध स्थानों शमशान शव आदि और रमणीय सुंदर देवियों और अरमणीय कुत्सित कुरूप डरावनी शक्तियों भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी शाकिनी आदि की साधना करते थे। नाथ योगियों ने पतंजलि के योग सूत्र का सहारा लेकर अपना रास्ता अवश्य ही इनसे पृथक कर लिया था। इस संप्रदाय का प्रभाव देश के पूर्वी भागों में अधिक था। सिद्धों की परंपरा शैव मत योग मत से प्रभावित होकर कुछ परिष्कृत होकर नाथ संप्रदाय में परिणत हो गई। इन्वर्टेड कॉमा बंद। 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जैन धर्म का प्रचार उत्तर भारत के दक्षिण भारत की सीमाओं को छू गया। उसमें भी सनातन हिंदू धर्म की अनेक प्रवृत्तियों का प्रवेश हो गया। बौद्ध धर्म की भांति इसमें भी मूर्ति पूजा होने लगी, किंतु जैसे जैसे ब्राह्मण धर्म का प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म का प्रभाव भी कम होता गया। गुजरात में राजा जयसिंह ब्रैकेट में सिद्धराज और कुमारपाल ने इसे अवश्य ही समृद्ध किया। गुजरात में जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो मंदिरों में बढ़ रहे विलास और अकूत संपत्ति का पता चला। इस आक्रमण से शैवों और जैनों के संघर्ष की भी सूचना मिलती है। बौद्ध और जैन धर्मों के छेड़ होने से हिंदू धर्म का तीव्र पुनरुत्थान हुआ। शंकराचार्य ने बौद्धों के बढ़ रहे प्रभाव को एकाएक रोक दिया तो 12वीं शती में रामानुजाचार्य ने दक्षिण में आलवार और नायनार संतों की भक्ति का आश्रय ग्रहण कर भक्ति आंदोलन खड़ा कर दिया, जो दक्षिण से उत्तर भारत तक फैल गया। इसी बीच बाहर से आए इस्लाम धर्म ने भी अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया था। हिंदू धर्म में भी वैष्णव शैव शाक्त आदि कई संप्रदाय हो गए तो इस्लाम भी आगे चलकर शिया और सुन्नी में बट गया। इसकी एक उदारवादी शाखा आगे चलकर सूफियों के रूप में दिखाई पड़ती है और उन सूफियों में भी चार संप्रदाय का होना पाया जाता है। इस प्रकार आदिकालीन कविता का धार्मिक परिवेश अत्यंत जटिल था। हिंदू बौद्ध जैन इस्लाम आदि सभी धर्मों में विभाजन और उनसे अनेक संप्रदायों का चल निकलना पाया जाता है। इन धर्मों की साधना पद्धतियों आस्था अनास्था देव कल्पना शक्ति कल्पना मूर्ति पूजा अवतार कल्पना पृष्ठ संख्या 11 निर्वाण या मोक्ष कल्पना आदि एक दूसरे में इतने घुले मिले हैं कि इस्लाम को छोड़कर शेष धर्मों के मूल रूप को पहचान पाना ही कठिन लगता है। हिंदू जनता में धर्म के अधिकाधिक प्रचार के लिए इन्होंने हिंदू धर्म की अनेक रीति रिवाजों पूजा विधियों को अपना लिया, किंतु सनातन हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के बाद यह कमजोर पड़ता गया। तथापि इस काल की धार्मिक पद्धति और साधना विधियाँ अत्यंत विषम और असंतुलित थीं, जिसके कारण सामान्य जनमानस में गहरा असंतोष व्याप्त था। धर्म का मूल रूप विलुप्त हो चुका था और उसके स्थान पर अनेक संप्रदाय और पंथ निकल पड़े थे, जिसका प्रभाव इस युग की कविता पर भी देखा जा सकता है। संभवतः इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि इन्वर्टेड कामा शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में इतने विरोधों और व्याघातों का युग कभी आया हो। इन्वर्टेड कामा बंद। द्विवेदी जी ने कबीर और मध्यकालीन साधना पद्धतियों के संदर्भ में इनकी गहनता से पड़ताल की है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल भारतीय संस्कृति के उन्नयन का काल है। इस युग में जहाँ भक्ति युगीन कविता का बीज वपन हो रहा था, वहीं इस्लामी संस्कृत के स्वर्ण शिखर भी स्थापित हो रहे थे। यह काल वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दो संस्कृतियों के टकराहट का काल है। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने जहां हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी बनाया, संगठित एकता का आधार दिया, वहीं दक्षिण में चोल, चालुक्य और होयसलों ने मंदिरों और प्रतिमाओं का निर्माण कराकर स्थापत्य कला को एक नई ऊंचाई दी। संगीत, चित्र और मूर्ति कलाओं में देशाभिमान और जातीय गौरव की भावना अभिव्यक्त होती थी। मंदिरों में रानी की मूर्तियां भी रखी जाती थीं। भुवनेश्वर, पुरी, सोमनाथपुरी, बेलोर, कांची, तंजौर, खजुराहो, कोणार्क, मथुरा, दिलवाड़ा, वाराणसी आदि मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ। आबू का जैन मंदिर 11वीं शती में निर्मित भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। अरब इतिहासकार अलबरूनी ने लिखा कि इन्वर्टेड कामा वह ब्रैकेट में हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। हमारे लोग ब्रैकेट में मुसलमान जब उन्हें ब्रैकेट में मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह ना तो उनका वर्णन ही कर सकते हैं ना वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। महमूद गजनवी स्वयं भारतीय संस्कृति की इस श्रेष्ठता पर मुग्ध था और ईर्ष्या भी करता था। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, इन मंदिरों की शोभा और अपार संपत्ति ने विदेशी आक्रांताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वयं सोमनाथ मंदिर का कई गांवों पर शासन था और व्यापार में भी उसकी अच्छी हिस्सेदारी थी। कालांतर में ये मुस्लिम आक्रांताओं की ईर्ष्या और धन लिप्सा की तृप्ति के साधन बन गए। यहाँ के लोग इनकी यथेष्ट रक्षा का उपाय ना कर सके। पृष्ठ संख्या 12। इस काल में जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि दो सांस्कृतिक मानसिक तनाव की स्थिति में एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रही थी, फलतः इस काल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से आच्छादित दिखाई पड़ता है। हिंदुओं के रहन-सहन, मनोरंजन, आहार विहार आदि सभी में धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति घुल मिल गई। हिंदू और मुसलमान दोनों ही संस्कृतियों ने एक दूसरे की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया, जिसका प्रभाव आगे चलकर चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, वाद्य यंत्र, गीत संगीत, नृत्य, साहित्य आदि सभी पर दिखाई पड़ता है। साहित्यिक दृष्टि से यह काल बहुत समृद्ध है। इस काल में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं में रचनाएं हो रही थीं। अपभ्रंश भाषा उत्तरवर्ती अवहट्ट के रूप में प्रतिष्ठित हो पुरानी हिंदी का रूप ग्रहण कर चुकी थी। इस प्रकार इस काल में भाषा की दृष्टि से साहित्य रचना की तीन धाराएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। प्रथम संस्कृत धारा, द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश की धारा और तृतीय हिंदी की नई काव्य धारा। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे। इस बीच अनेक नाटककार, कवि एवं लेखक उत्पन्न हुए। आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ जैसे आचार्य एवं भवभूति, श्रीहर्ष एवं जयदेव जैसे कवि इसी युग के रत्न हैं। दार्शनिक दृष्टि से शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट और रामानुज आदि इसी युग में हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत और अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी इसी युग में लिखा गया। जैन आचार्यों ने संस्कृत के पुराणों को नए रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी काव्य कथाओं का उपदेश रसायनों में प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी का भी प्रयोग किया। इन रचनाओं के माध्यम से ये जैन धर्म को प्रसारित कर रहे थे। हिंदी के रूप में प्रयुक्त होने से पूर्व अपभ्रंश जनभाषा या लोकभाषा की संवाहिका थी। राज दरबारों में भी संस्कृत के साथ इसकी देशभाषा के रूप में प्रतिष्ठा थी। 12वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का परिनिष्ठित रूप बदल गया। लोकभाषा के तत्वों के मिल जाने से जब इसका रूप बदलने पर इसे अवहट्ट कहा जाने लगा। इस अवहट्ट में हिंदी के पर्याप्त लक्षण मौजूद हैं। आरंभ में हिंदी अवहट्ट का सहारा लेकर चली पर बाद में स्वतंत्र हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा आधुनिक युग आरंभ होने के पहले हिंदी कविता के प्रायः 6 अंग थे। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, पृष्ठ संख्या 13, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना के पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस तथा रीति काव्य। हम इन 6ों धाराओं की आलोचना अगर अलग अलग करें तो देखेंगे कि ये 6ों धाराएं अपभ्रंश कविता का ही सहज विकास हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। कालांतर में इसी अपभ्रंश भाषा के भाषिक रूपों से अनेक उपभाषाओं और बोलियों का उद्भव एवं विकास हुआ, जिसमें आगे चलकर उत्कृष्ट साहित्य रचा गया जो हिंदी कविता की पहचान बन गए।